This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can, of course, call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I'm Gaurang Dhawan Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
पहले हेडलाइंस के साथ गौरा धवन लाल।
थैंक यू सुबोध एंड आकार, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines. Domestic markets to focus on FII activity. Fresh updates on tariffs and global macroeconomic data for Q's next week. Global crude oil prices register biggest weekly gains since first week of 2025. And FPI outflows moderate amid easing global concerns.
अगले सप्ताह देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, शुल्क से जुड़ी खबरों और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर। इस वर्ष के पहले सप्ताह के बाद से कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों में सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल और वैश्विक चिंताओं में आई कमी से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकासी कम की। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते सभी सेक्टर्स में अच्छी लिवाली की वजह से बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह यानी वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम सप्ताह में देश के शेयर बाजार का फोकस कई घरेलू और वैश्विक कारकों पर होगा। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां, शुल्क दरों से जुड़े निर्णय, चौथी तिमाही के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के जीडीपी के आंकड़े शामिल होंगे। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले घरेलू कारकों में मार्च के लिए विनिर्माण और सेवाओं के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई के आंकड़े भी होंगे, जबकि वैश्विक मंच पर अमेरिकी बाजारों पर नजर होगी। साथ ही अमेरिका के चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े और शुल्क से संबंधित फैसले भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों के साथ साथ बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति की बैठक और ब्रिटेन की मुद्रा स्फीति और जीडीपी के आंकड़ों से भी बाजार पर कुछ असर पड़ सकता है। पिछले हफ्ते बाजार ने पिछले 4 सालों की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की। साथ ही भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों ने 22 मार्च को खत्म हुए सप्ताह के लिए एशिया के अन्य देशों के सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। रुपए में आई मजबूती और विदेशी निवेशकों की बढ़ी हुई दिलचस्पी से बाजार में उत्साह रहा।
Meanwhile, our callers have started calling in. We welcome our first caller for the day, Vivek from Saharanpur. Vivek, स्वागत है, please ask your question.
भारतीय मार्केट में बैठी हूँ और आज के एक्सपर्ट से मिश्रा।
नमस्ते।
मेरा ये प्रश्न है, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और जो मेरा मंथली सिट है वो इक्विटी क्लास के लिए 12,000 है। और सर मुझे ये पता करना है, जैसे मेरे मंथ एंड में अगर कुछ मेरे पास अमाउंट बच जाता है या कोई मुझे एरियर अलग से पेड होता है तो मैं उसके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करूँ या कोई लिक्विड फंड उसके लिए खोलूँ? और मुझे बेस्ट लिक्विड फंड आप बताइए जिसमें मैं वो अमाउंट एसटीपी के जरिए अपने जो मेरा इक्विटी क्लास है उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ।
विवेक जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है, आपके पास एक बीच बीच में, जैसे मे बी आप फ्रीलांस में है या बिजनेस में है, और एक सेट अमाउंट नहीं होता जिसके आप SIP करें. बीच में ऐसा होता है कि कुछ कभी एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है एंड आप चाह रहे हैं कि आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहे. तो देखिए, इसके आपके पास दो तरीके हैं. एक तो है कि आप नॉर्मल, एक जो भी आपका जो मिनिमम अमाउंट आपको लगता है कि जो कि आप इजिली कर सकते हैं, लेट्स से अगर आप 10,000 का कर सकते हैं, आप उससे थोड़े से कम अमाउंट की SIP चालू करिए और इसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट अपना रख लीजिए. उसमें वो पैसा डालते रहिए और वहां से SIP चलाते रहिए. जो दूसरा तरीका है, जैसे आपने खुद का, आप एक लिक्विड फंड ले सकते हैं. जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, आप उस लिक्विड फंड में उस पैसे को पार्क करिए और वहां से एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान चालू कीजिए. इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, ये रहता है कि आमतौर पे देखा गया कि जब हम लोग पैसा अपने बैंक अकाउंट में ही रख लेते हैं तो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं कोई जरूरत आ जाती है और वो पैसा खर्च हो जाता है. बट जब हम उसी पैसे को उठा के एक लिक्विड फंड में डाल देते हैं तो वहां पे वो पैसा रिंग फेंस हो जाता है और हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ गार्ड हो जाता है. लमसम इस पैसा को बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा, भले ही थोड़ा सा भी अमाउंट हो. मतलब देखिए, अगर बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है कि जैसे 4-5 हज़ार रुपए है कुछ ऐसे, तो वो एक अलग बात है, वो एज गुड एज आपका SIP हो गई उस महीने की. बट आमतौर पे एक लमसम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप एक फेस मैनर में इन्वेस्ट करते हैं आप एवरेज आउट कर पाते हैं कॉस्ट ऑफ उसके अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को. और इक्विटी फंड के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अगर आप अभी, जैसे आपने इससे पहले कभी इक्विटी में निवेश नहीं किया है, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से शुरुआत कीजिए. उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड बॉन्ड फंड अच्छा है और DSP का भी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड अच्छा है. आप जब STP करेंगे तो इसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि आप जिस फंड का टारगेट फंड, यानी कि जैसे कि आप जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड चूज कर रहे हैं, आपको उसी फंड हाउस का लिक्विड फंड भी चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे फंड हाउस के लिक्विड फंड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान नहीं कर सकते. यहां पे लिक्विड फंड के लिए आपको रिटर्न्स की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरमिटेंट पार्किंग के लिए आपका फंड है, आपका टारगेट फंड नहीं है. टारगेट फंड आपका जो मेन, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, वो है. तो आप ICICI का अग्रेसिव हाइब्रिड लीजिए या DSP का लीजिए और उन्हीं के लिक्विड फंड में पार्क करके STP चालू कर सकते हैं.
जी, अगले कॉलर हैं इंदौर से अनिल. अनिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
सर, हमारे दो सवाल हैं. एक सवाल यह है कि जो गैर कर्मचारी है जिनके पास 15 या 30 लाख रुपए है, उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा? और दूसरा सवाल यह है कि सोना चांदी जमीन और मकान, इनके भाव तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के बजाय चीजों में लगा दें, तो उन लोगों को कितना फायदा होगा?
अनिल जी, आपकी आवाज हम साफ साफ नहीं सुन पाए, शायद फोन लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है. हम दोबारा इनसे जानने की कोशिश करेंगे. अगले कॉलर के पास चलते हैं, महाराष्ट्र से मुकुंद हमारे साथ हैं. मुकुंद, स्वागत है आपका, सवाल पूछे. मुकुंद,
मुकुंद प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड देयर इज नॉइज इन द बैकग्राउंड, इफ यू कुड गो टू अ क्वाइट प्लेस टू, थोड़ी शांति वाली जगह पे
जाइए. गोल्ड ETF का
सवाल फिर से पूछिएगा प्लीज.
क्या बोले मैडम?
आप एक बारी फिर से सवाल पूछिएगा.
जस्ट रिपीट अगेन मैडम, प्लीज.
प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन मुकुंद.
हाँ, ETF के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, गोल्ड ETF.
जी
देखिए, जो गोल्ड ETF है, ये एक आपका बहुत ही हैसल फ्री तरीका है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो गोल्ड ETF इज ऑल्सो बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड. बट यहाँ पे जो एक बेनिफिट रहता है कि आपको उस फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज की दिक्कत नहीं उठानी पड़ती. अगर आप नॉर्मली पहले, जैसे अगर कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट करता था तो लोग ज्वेलरी ले लेते थे या फिजिकल गोल्ड ले लेते थे. बट उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि आपको उसका एक सिक्योर स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है. और ज्वेलरी के केस में अगर बाद में आप रियलाइज करते तो कुछ उसमें कटौतियां भी हो जाती है मेकिंग चार्जेस के तौर पे. तो गोल्ड ETF आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, गोल्ड ETF, या फिर एक दूसरी आपके पास और ऑप्शन है गोल्ड FOF, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दोनों में मैं आपको फर्क बता देता हूं. जो गोल्ड ETF है, ये एक नॉर्मल शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होगा, तो ये आपको मार्केट आर्स में खरीदना पड़ेगा और उसके अलावा आप इसमें एक एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं जो गोल्ड एफओएफ है वो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है जो कि इंटर्न आपका पैसा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सहायतामंद होता है जिन लोगों के पास एक स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है या डीमैट अकाउंट नहीं है। बाकी इन दोनों में चुनने के लिए जो मेन पैरामीटर्स है कि अगर आप देखना चाहें कि कौन सा गोल्ड ईटीएफ अच्छा है और या कौन सा गोल्ड एफओएफ अच्छा है, उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आप देखिए, कम से कम हो कम एक्सपेंस रेशियो का और एक कम ट्रैकिंग एरर का फंड लीजिए, वो अच्छा रहेगा।
आकार, आपने कहा ईटीएफ और एफओएफ दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो ईटीएफ के लिए तो हमें डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल,
और उसके लिए भी एक फी हमें देनी पड़ती है।
हाँ जी,
मोस्टली तो क्या, लेकिन एफओएफ जो गोल्ड एफओएफ है और ईटीएफ है, दोनों के परफॉर्मेंस एक जैसे हैं?
देखिए ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। एफओएफ में बहुत हल्का सा आपको एक्सपेंस रेशियो का फर्क आ जाता है, बट चीज वही है, एक तरीके से आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में ही पैसा जा रहा है, बस वे ऑफ इन्वेस्टिंग डिफरेंट है। अगर किसी के पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है तो उसके लिए प्रॉबेबली गोल्ड ईटीएफ ज्यादा बेहतर है।
हाँ।
और अगर उसको वन टाइम पैसा भी लगाना है तो, क्योंकि वहां पे आप एसआईपी नहीं कर सकते, और अगर किसी को रिकरिंग बेसिस पे लगाना है और उसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्रॉबेबली गोल्ड एफओएफ ज्यादा एक कन्वीनियंट वे है।
We welcome our caller from Delhi, Shabir. Welcome to the program.
जी,
please अपना सवाल पूछेगा।
हाँ जी, मेरा जो सवाल है, एक तेजर निफ्टी जो एक आया मार्केट में, वो क्या चीट फंड है क्या वो ठीक है?
एक बार रिपीट करिए, कौन सा चीज आया मार्केट में?
वो तेजर निफ्टी,
उसके बारे में शायद।
और एक सवाल है, जैसा कि आईसीआई प्रूडेंशियल मैम जो ये शेयर जो एसआईपी कर रहा था, तो इसमें बेंचमार्क में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहा है और राइट साइड में कम हो रहा है, तो ये एसआईपी क्या है, कितना तक ये सही है?
नहीं शबीर जी, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन माफी चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया, मेरे को क्लैरिटी नहीं है आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
शबीर जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो एक बारी अपना क्वेश्चन आप फिर से फ्रेज करके मन में, और फिर हमें कॉल करिएगा और हमारे एक्सपर्ट आपको आंसर कर देंगे। मीनवाइल भोपाल से वी हैव अ कॉलर शंकर। शंकर वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग मार्केट कंट्रोल टीम। सर, आई हैव वन क्वेश्चन, वन इज टू क्वेश्चन, वन इज कैपिटल गेन स्टेटमेंट, अगर कैम से निकालो तो कैम के वालों का मिलता है, अगर कारवी से निकालो तो कारवी का मिलता है, के फिनटेक से, क्या एमएस सेंट्रल से निकालेंगे तो दोनों को कंसोलिडेट मिलेगा क्या? आई मीन दो ऑल द फंड विच आर कम अंडर द कैम्स एंड के फिनटेक, तो क्या एमएस सेंट्रल से मिल सकता है क्या एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कैपिटल गेन का? और दूसरा सवाल सर, सीनियर सिटीजन मेरे फादर हैं, वो अगर कैपिटल गेन बुक करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में तो उनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है क्या? क्या उनको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा 15 मार्च से पहले या पे आफ्टर 31st मार्च? थैंक यू।
So I think I'll take your second question first. Firstly, the liability to pay advance tax is generally when your total tax liability after all the TDS and all other tax deductions is 10,000 or more. So if that is the case, in that case you'll have to pay advance tax. Otherwise, you can proceed ahead with the normal return filing, by the 31st of July for this financial year. And in regards to your first question, I would say I'm not very sure if you would get a consolidated statement for all the funds over there on the capital gains basis, but ideally it should be there. It's absolutely free of cost. I would say just log in there once and give it a try. Even otherwise, what you can do is, you can just collate both the, you can, I work with Value Research, and on our website, you get the access to the, My Investments Portfolio Tracker, wherein you can upload all your investments and we have a tax report over there. So you can get an idea of the complete capital gains transactions over there in a consolidated view. That could be another option for you.
दिल्ली से यशपाल हमारे साथ हैं। यशपाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
गुड इवनिंग।
माय क्वेश्चन इज, डिस्टिंग आई रिटायर अराउंड 10 मंथ्स बैक एंड आई इन्वेस्टेड इन एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड एंड एसबीआई पीएसयू फंड एंड बोथ थ्रू लंपसम वे एबीटी एडवाइज ऑफ फंड ब्रोकर ओनली So SBI hybrid fund is working fine. It is in positive. But SBI PSU fund, it is showing a negative return, 10%. So the amount is big. So that's why I'm asking whether what should I do? I should exit from it and invest somewhere else, or I should wait for 1 or 2 years more? Thank you.
Yashpal, I think the first mistake that we have done is that we invested a lump sum amount. So I think as we were talking with first caller of this show, it is never advisable to invest a lump sum amount of your money, when investing in equities. So the reason behind is that you're able to average out your cost of purchase. And, you know, in such similar situations, when there is a sharp market downturn, soon after you have invested your money, the anxiety level, it is very easy to control your anxiety levels in that case, because the complete amount would not, fell as sharply as the market. But in your specific case, since you have already invested, I would say, firstly, the sector PSU fund, the SBI PSU fund, it's a sectoral fund. It's a sectoral and a thematic fund. Such funds are generally more cyclical and more volatile than a normal diversified fund. So when the markets fall, it is likely to fall more. So in the current scenario, that is probably the reason that you are saying that, the amount invested is big and, it has been giving you a certain kind of losses. But my suggestion would be, since you have already invested and it's only 10 months, don't book your losses, because right now all your losses are only in the notional format. They are paper losses. If you sell it right now, you will make your losses permanent. So stay invested, give it some time. And anyways, whenever we are investing in a sectoral fund, the horizon should be at least like 7-8 years because they are more riskier than a normal fund. Coming to your second fund, the aggressive hybrid fund, as you said that it hasn't fallen that much. That's basically because that it's a combination of equity and debt. Aggressive hybrid funds of the same kind, they generally invest around 2/3 of the money in equities and the rest in fixed income. So what happens is when the markets fall, like the phase we are witnessing right now, they fall less than a pure equity fund. And the example is right in front of you, like the PSU fund, that's the equity fund, and it has fallen more. So stay invested for now. If your money is meant for 5 years or more, and I would say just don't panic sell. Otherwise, you'll make your losses permanent.
Welcoming from Delhi, Vijay. Vijay, please ask your question.
Yeah, hi. Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
My question is, one agro company, it was micro company, and on the portal it is showing zero, while it was trading at the rate of 327 something rupees. So may I know the reason why? Actually, I was planning to invest in that. It was an agro company. I should not take the company name.
एक्चुअली आज हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पर ही सवाल ले रहे हैं और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के ही जवाब दे पाएंगे. बाकी आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो शनिवार और सोमवार को कॉल कर सकते हैं, जिस पर हमारे एक्सपर्ट उस दिन इन सवालों के जवाब दे पाएंगे. और अगले कॉलर हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारे मुंबई से कपिल. कपिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
थैंक यू जी. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा क्वेश्चन है, जैसा भी इन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड का ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक्चुअली 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन गोल्ड में. तो मुझे बिस्किट लेना बेनिफिट रहेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में जाऊँ?
See, I would never suggest you to go for physical gold, whether it be in the form of biscuits or something else. The prime reason is that once you buy it, you'll have to, start worrying about its safe storage. And then, there'll be other, complications attached to it, so like safe storage cost. If you, plan to keep it with a bank in a locker or something, it will have some kind of additional costs. So, avoid investing in physical gold. And if you have to invest, so here I would also like to use this opportunity to bring the matter into fact that gold is not good as a long-term investment. It is generally good as a hedge. So gold generally shines, if you look back at the history, whenever there is uncertainty in the market or equities fall, gold will go up. And that is kind of a similar situation that we are witnessing right now. You know, all those trade war going on with Trump and, you know, the uncertainty and the markets falling, equities, we have seen markets falling from the last week of September. After the late September, markets have been falling, and from 85,000 to Sensex has come to around 73, 74,000 right now. So in such situations, gold will always go up because it's like a safe haven. So use it as a hedge for your portfolio, and for this purpose you may consider investing around 5 to 10% of your portfolio. But beyond that, I would not suggest, because in the long term, if you compare it with equity over a 10-year or a 15-year period, then equities have given much better return. And for investing that, paper gold is much better than physical one.
From Delhi, we have our next caller, Nitin. Nitin, welcome. Please ask your question.
Namaskar.
Namaskar.
सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने ये देखा है सर, जब सोना 4000 से स्टार्ट होकर 12000, 36000, 50, 55, 60, 90 के करीब पहुंच गया, तो सोने में ही इन्वेस्ट करना ठीक है क्या? ये शेयर मार्केट में जाना चाहिए कि फर्स्ट जो टाइम जो इस म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जाना चाहता है? क्योंकि मेरे पास अपने एफडी है, मेरे पास कुछ करीब करीब 35 लाख के आसपास मेरे पास एफडी है, मैंने बैंक में डाल रखी है। मैं चाहता था कि गोल्ड परचेज कर लूं, तो वो ठीक रहेगा कुछ हद तक? मैं एफडी में ही बना रहा हूं, सीनियर सिटीजन हूं मैं।
देखिए, जो मैं पहले आपके उसी सवाल पे आता हूँ जो गोल्ड का सवाल है, देखिए जो एक गोल्ड है ना, वो एक अनप्रोडक्टिव असेट क्लास है। जब आप इक्विटी में, जैसे आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं। एक तरीके से ऐसा होता है कि बिजनेसेस को आप वो पैसा दे रहे हैं, जिससे कि वो बिजनेसेस उस पैसे को और प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, जिसका कुछ एक पार्ट आपको मिलता है। वहीं जैसे आपने कहा कि आप ने एफडी में पैसा लगा रखा है, वहां पे आपने एक तरीके से बैंक को अपना पैसा ब्याज पे दिया है, तो वो आपको ब्याज दे रहे हैं। तो ये दोनों एक प्रोडक्टिव असेट क्लास है। बट जो गोल्ड है, इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी ऐसी किसी चीज से डिराइव नहीं होती, वो केवल और केवल डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई से, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मत देखिए। अभी उसका गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको 7 ईयर 8 ईयर 10 ईयर रिटर्न भी थोड़ा अच्छा खासा दिखेगा। बट ओवर द लॉन्ग टर्म, 15 साल में और जनरली जो एक 10 ईयर पीरियड रहता है, वो इक्विटी के कंपैरिजन में इतना रिटर्न नहीं दे पाता। तो गोल्ड को सिर्फ हेजिंग के लिए रखिए 5 से 10%। जो पैसा आपका अभी एफडी में है, अगर वो लंबे समय के लिए चाहिए, आपको निवेश करना है, 7-8 साल के लिए आपको निवेश करना है ज्यादा के लिए, तो फिर आप उसको एक फेज मैनर में अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में लगाइए, इक्विटी में निवेश करिए, वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
सो सॉरी, जस्ट अनदर ऑफशूट फ्रॉम नितिन जी'स क्वेश्चन, व्हिच इज आई थिंक बिकॉज ही इज प्राइमरली इन्वेस्टिंग इन एफडीज, ही इज अ सेफ इन्वेस्टर, वांट्स इट क्लियर एंड सेफ, एंड गोल्ड इज ऑल्सो सीन एज बींग सेफ, यू नो। सो समवेयर मे बी व्हिच इज equally safe but a better return than FD, would there be something like that?
Yeah, definitely. I think then maybe probably he can look for equity saving funds. So equity saving funds mein kya hota hai ki jo aapka paisa hai wo lagbhag 1/3 hi sirf equities mein lagta hai. To dekhiye, FD jitna safe to wo nahi rahega kyunki FD ekdam guaranteed return deta hai. Yahan pe thoda sa equity ka element hoga to thoda sa volatile hoga. बट ये आपको एक इक्विटी की ग्रोथ भी देगा, और जैसे सीनियर सिटीजन है तो एक जो हमारा एक आइडियल पोर्टफोलियो होता है इनकम जनरेशन के लिए, कि 1/3 इक्विटी 2/3 फिक्स्ड इनकम, वो आपको मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। तो यहां से एक अपना एनुअल विड्रॉल रेट आप बना सकते हैं अराउंड 4-5% का, जो कि सेफ रहेगा।
राइट, सो एफडी से ज्यादा यू विल गेट अ रिटर्न।
या
वेलकमिंग अ कॉलर फ्रॉम भुवनेश्वर, डॉक्टर उपाध्याय।
नमस्ते।
नमस्ते जी।
मेरे तीन खुद क्वेश्चन है। एक तो निराई एसेट NYSE फैंग ETF फंड ऑफ फंड में डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे SIP हो, ये किस लिए, क्यों इसको बंद कर रखा है, इसका थोड़ा जानकारी दीजिए। दूसरा, जो ये वैल्यू रिसर्च से एक्सपर्ट आए हुए हैं, इनको थोड़ा मुझे इंफॉर्मेशन देनी है कि कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी सारे RTA के मिला के के फिनटेक में ऑलरेडी मिलता है, तो आप वैल्यू रिसर्च का ये यहाँ पे जो कर रहे हैं उनके यहाँ जाएं, आपके यहाँ सारा एंट्री करें और फिर ट्रैक करें, ये सब मत बताइए, और आप थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा
जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यू ऐड किया प्रोग्राम में, प्लीज इनके सवाल का जवाब दीजिए।
सर पहला तो मैं इसके लिए आपको कहूंगा कि ठीक है, वो बस एक तरीका था, आप वहां से भी देख सकते हैं, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए अगर आपको ऐसा लगा। बाकी दूसरा जो आप इंटरनेशनल एफओएफ का बता रहे हैं, उसमें एक आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट द्वारा लिमिट्स होती है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये जो हमारी ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की लिमिट है $7 बिलियन की, ये अराउंड 2022 में 22 के आसपास ब्रीच हो गई थी, जिसके वजह से जो म्यूचुअल फंड्स है अधिकतर फंड्स ने पैसा लेना बंद कर दिया था। उसके बाद एक एएमसी की स्पेसिफिक लिमिट भी होती है $1 बिलियन की, जो कि किसी किसी फंड में अभी बची हुई है। उसका कारण है कि कोई कोई सा फंड अभी भी थोड़े बहुत पैसे ले रहा है, बट जो इसका मेन रीजन है कि जो ज्यादातर फंड्स है वो इसी वजह से भी पैसा नहीं ले रहे, क्योंकि जो गवर्नमेंट द्वारा एक अलाउड लिमिट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरसीज सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, वो हमारी 2022 के अंदाजन ब्रीच हो गई थी, और अभी तक उसमें और आगे कुछ भी लिमिट खुली नहीं है।
We move on to our next headline story. Oil prices recorded second consecutive weekly gains as fresh US sanctions on Iran and the latest output plan from the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, which includes OPEC Plus Russia and other allies, raised expectations of tighter supply. Brent crude oil futures rose by 2.1% last week to end at $72.16 a barrel. US WTI crude futures added 1.6% during the week to finish at $68.28 per barrel, their biggest gain since the first week of the year. Oil prices were also supported by the new OPEC Plus plan for 7 members to cut output further to compensate for producing more than agreed levels.
आइए एफपीआई के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लगभग 3 महीने की लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार से अपनी निकासी को थोड़ा कम किया, जिससे शेयर बाजारों में उत्साह बना रहा। वैश्विक चिंताओं के कम होने और रूस यूक्रेन संघर्ष में संभावित कमी से भी बाजार सकारात्मक था। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस महीने 21 मार्च तक इक्विटी से एफपीआई की बिकवाली घटकर 31,719 करोड़ रुपए रह गई थी, जबकि 13 मार्च तक यह आंकड़ा 30,016 करोड़ रुपए का था। इसका मतलब है कि 1 से 13 मार्च तक एफपीआई ने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले थे, लेकिन 13 से 21 मार्च के बीच उन्होंने लगभग 1,700 करोड़ रुपए ही निकाले थे।
We just have time for our last caller from Faridabad, Suresh. Suresh, quickly ask your question.
नमस्कार जी।
नमस्कार जी।
जैसे कि अभी आप इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मैं पहली बार इसमें आपके पास कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने इतना सुंदर समझाया। हम बैंक में जाते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में पूछते, वहाँ कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं होता कि हम किस तरह से म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा पाएंगे। आप इस तरह इतने सुंदर तरीके बता रहे हैं, आप लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए, ऐसे ही कोई वो बताइए, ऑफिस या जहाँ जाए, और हमारे को नए जो कस्टमर है आपके पास जाके आपसे हेल्प ले पाए।
जी
आप मुझे लगता है कि आप मार्केट मंत्र से अगर जुड़ रहे हैं, और मार्केट मंत्र में आप हर रविवार को फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप बाजार में जाकर किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो आकार बता पाएंगे कि वो कौन से आधिकारिक लोग होते हैं जिनको एमफी से,
जिसका देयर इज नो कमर्शियल इंटरेस्ट,
राइट। सो देखिए, आप एम्फी की वेबसाइट पे जाइए एंड वहां पे आप अपना पिन कोड डालिए, वहां पे आपको बहुत सारे जो भी आपके आसपास के म्यूचुअल फंड एजेंट्स है, बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, बट एजेंट्स का भी एक उसमें थोड़ा सा कमीशन का इंटरेस्ट रहता है, सो यू विल हैव टू यू नो लुक फॉर अ गुड वन, एंड इट्स बेस्ट यू जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क द क्वेश्चंस लाइक why is he suggesting that to invest, and I mean just understand all the pros and cons, the risk and rewards of where you are investing, and I think it should help you.
Right.
जी आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.
एब्सोल्युटली थैंक यू आकार. रियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन. एंड नाउ लिसनर्स बिफोर वी क्लोज अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन FII एक्टिविटी. फ्रेश अपडेट्स ऑन टैरिफ्स एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रजिस्टर बिगेस्ट वीकली गेन सिंस फर्स्ट वीक ऑफ 2025. And FPI outflows moderate amid easing global concerns. And that's it for today's program. Namaskar. Market Patra.